अरबों का एक रिवाज था कि जो बच्चे शहरों में पैदा होते थे ना, उनको गांव और देहात की खुली ज़मीन पे भेज देते थे, क्योंकि जो गांव में रहने वाली औरतें होती हैं ना, वो स्ट्रांग होती हैं, आबो हवा भी खुली होती है, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होती, आर्टिफिशियल ज़िंदगी नहीं होती। तो रिवाज था कि बच्चों को पेड औरतों के पास भेज दिया जाता था, उनका माश चल जाता था, वो दूध पिलाती थी और लोग उनको बच्चे पैसे दे दिया करते थे। इसी दौरान जब कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस लिस्ट में खड़े थे कि आप किस औरत के पास जाया जाए, तो कुछ औरतें अपने गांव से निकली और मक्का की तरफ आईं कि चलो हम जाके शहरों से बच्चे ले आते हैं और कुछ काम कर देते हैं। बनू साद कबीले की कुछ औरतें सारी मिल के आईं, दोस्तें भी थी। उम्मे हलीमा, हलीमा सादिया जिनका हम नाम अब कहते हैं, ये भी उस काफिले में थी। इनके बाप का नाम अबू जुबैब था, ठीक है, यानी हलीमा के वालिद अबू जुबैब जो थे, ये कुनिया थी लेकिन नाम उनका अब्दुल्ला बिन हारिस था, जो अल्लाह के नबी के रज़ाई नाना बने। हलीमा के शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज्जा था। अब ये थोड़े नाम अभी लग रहे हैं आपको मुश्किल, नाम भी याद करें कोई बात नहीं, लेकिन जो कि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये नाम देना चाहिए, ताकि कुछ तो हमारे जहन के अंदर चीज़ें जाएं कि अल्लाह के नबी के बारे में हम जान सकें। कहती है कि हमारी ऊँटनी बिल्कुल फाकेज़दा थी, भूखी थी, गुर्बत इतनी थी कि बकरी का दूध भी सूखा हुआ है और माँ के जिस्म में भी दूध नहीं है। इनका अपना बच्चा भी था लेकिन दूध नहीं था। कहती कि जो औरतें थीं वो अपनी ऊँटनियों पर सवार होके गईं, हमारे पास से गुजर गईं, और हम अपनी गधी को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, कमज़ोरी की वजह से वो चल ही नहीं रही। कहती है मैंने अपने शौहर से कहा, सारे अच्छे अच्छे घरों के बच्चे तो ये औरतें ले जाएंगी, हमें क्या मिलेगा। खैर, कहती हैं कि हम चलते रहे, शाम का वक्त था। जब हम मक्का के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी जो दोस्तें थी वो सब घरों के बच्चे ले के भावताव करके, अच्छे अच्छे घरों के, अमीर घरों के बच्चे लेके वापस आ रही हैं। मेरे शौहर ने कहा कि हमें क्या मिलेगा। पहले हमने सोचा कि चलते हैं वापस, लेकिन फिर वही बात है कि आए हैं तो कुछ तो लेके जाएं। कहने लगी जाके देखते हैं क्या होगा, लेकिन आपको पता है कि उनको क्या मिला। एक ऐसा बच्चा मिला कि जिसको पाने के बाद उनकी अपनी दुनिया बदल गई। बरकतों का ऐसा नज़ूल बीबी हलीमा के घर में हुआ कि आज तक इंसानियत हैरान है कि एक बच्चे के वजूद से इतनी खैर मिल सकती है। कहती हैं जब हमारे सामने वो बच्चा पेश किया गया तो हमने सोचा यतीम बच्चा है, और देखिए अब्दुल मुतलिब सरदार थे लेकिन दौलतमंद नहीं थे। अरबों में दौलत सरदारी या हुकूमत और वजारत और अमारत के साथ नहीं थी, बल्कि जो सरदार होते थे वो गरीब ज़्यादा हैंड टू माउथ होते थे, सारा कुछ लोगों को खिला पिला देते थे, उनके अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता था, यही हालात थे। लेकिन वो कहती हैं कि जब ये बच्चा पेश किया गया तो हमने कहा चलो ले जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब अल्लाह के नबी उस गधी पे सवार हुए, कहती हैं कि आपके सवार होने की देर थी कि मेरी गधी जो जाते हुए इतनी आहिस्ता आहिस्ता रींग रही थी, वो तेज़ी से फरलाटियाँ भरने लग गई। कि वही जो मेरी दोस्तें काफ़ी देर पहले की मक्का से निकल चुकी थी, थोड़ी देर में मैंने उनको क्रॉस किया, मैं आगे आ गई। वो कह रही हैं इसको तो देखो, ये अबू जुबैब की बेटी को क्या हो गया है। कहती जब घर आए तो हमारी बकरी जिसके थनों में दूध नहीं था उसके दूध थे थन भरे हुए। हमारे घर में एक दरख्त था वो हरा हो गया, इनके अपने सीने में दूध था, इनके अपने बच्चे भी मौजूद थे, अल्लाह के नबी के साथ इनके बच्चे थे। इनके शौहर का नाम चूँकि हारिस था तो उनसे इनके जो बहन भाई थे अब्दुल्ला, उनैसा, जुजामा, और इन्हीं का लकब शीमा भी था जो बहन थी। इस तरह से ये बच्चे फिर अल्लाह के नबी को हलीमा सादिया के नाते से मिले। यहाँ अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो ये जो आज हम मुसलमान होने के बावजूद छोटे छोटे नट शेल्स में बंद है ना होल, हम शेख हैं तो बड़े आला हैं, हम जाट हैं तो बड़े आला हैं, गुज्जर हैं तो बड़े आला हैं, आप इस कल्चर में देखें सुनते हुए इन बातों को तो आपको फ़र्क महसूस होगा। हबशन औरत ने अल्लाह के नबी को दूध पिलाया, आज आप और मैं किसी ब्लैक औरत से अपने बच्चे को दूध पिलवाएं, शायद हम सोचे पता नहीं हमारा बच्चा ही ना काला हो जाए। सच्ची बात है, हम जानवरों का दूध पिलवा लेंगे, औरतों का नहीं पिलवाएंगे। उस दौर में लोग अक्लमंद औरतों का दूध पिलवाते थे, अल्लाह से डरने वाली औरतों का दूध, ताकि उसका असर हमारे बच्चों के ऊपर रहे। इस तरह हलीमा के आते ही घर का हाल हुलिया बदल गया। वो आपने पोएम भी सुनी होगी ना, हलीमा तेरी किस्मत क्या है, किस तरीके से लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाते ही खुश होने के दिनों में उनकी हालत बदली। कहती शहर में बातें मशहूर हो गई कि इसको कोई ख़जाना मिल गया, जिधर हमारी बकरियां जाती हैं चरने के लिए वहीं इसकी भी जाती हैं। हमारी बकरियां खाली पेट आती हैं और इसकी बकरियां आती हैं तो उनका पेट भी फूला होता है और थनों में दूध होता है। अब आप सोचिए कि एक नबी का बचपन, उससे एक घर में इतनी रहमतें आईं, तो जब वो बच्चा नबी बना, उसके ऊपर पैगाम हिदायत उतरा, आज अगर उनकी उम्मत उसके एक नक्शे कदम पे चलती है तो क्या आज हमारा ये हाल हो? कर्जों में जकड़ी हुई मारी पिसी उम्मत की हालत। वो कहते हैं ना कि बड़ा कड़ा वक्त आ गया है नबी आपकी उम्मत पे। आज अगर हम मुसलमान दुनिया की भी नेमतों से महरूम हैं तो हमने उस नबी के तरीक़ों को छोड़ा हुआ है, हमने उनकी कदर नहीं की। हम कुरान भी पढ़ते हैं लेकिन हमें खुशू और खुदू नहीं मिलता। तो आज अपने सुन्नत के इस सफ़र के साथ साथ ये दुआएं करनी है कि हमने उस नबी की कदर करनी है जिसके साथ ये मामलात हुए और किस तरह से अल्लाह ने थोड़े से दिनों में उसकी हालत बदल दी। 2 साल अल्लाह के नबी हलीमा सादिया के घर में रहे, मुद्दत रज़ात पूरी हुई, हलीमा ने आपका दूध छुड़वा दिया, अल्लाह के नबी खूब मज़बूत और पुख्ता हो चुके थे। हज़रत हलीमा की आदत क्या थी कि हर 6 माह के बाद आपको मक्का ले जाती और आपकी माँ और ख़ानदान के लोगों से मिलवा लाती, वापस बनू सात में आप आ जाते। जब रज़ात की मुद्दत पूरी हुई तो असूलन तो अब ये बच्चा वापस जाना था ना माँ के पास, लेकिन हलीमा नहीं चाहती थी क्योंकि एक तो बच्चे की बरकत बहुत थी, दूसरी मोहब्बत बहुत थी। अल्लाह के नबी को तो जो एक नज़र देख लेता था आपसे बहुत मोहब्बत करता था। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि देखें अगर आप इस बच्चे को कुछ अर्सा और मेरे पास छोड़ दें तो फ़ायदा होगा, थोड़ा और मज़बूत हो जाए, ज़रा खुले मौसम में पल ले, और मक्का में एक वबा भी फैली हुई है, क्या ऐसा ना हो कि बच्चे को कोई जरासीम लग जाए। माँ ने कहा ठीक है। इस तरह हलीमा वापस आपको ले आई। 2 साल तकरीबन और पेश हुए, 4 साल की उम्र मुबारक हो गई, बास कहते हैं कि इससे भी थोड़ा सा और ऊपर, यानी 4 से 6 साल की मुद्दत के बीच में। उसके बाद एक वाक्या पेश हुआ जिससे हलीमा सादिया डर गई। और वो क्या हुआ, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक्य को बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेल रहे थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, और ज़ाहिर है कि जब फरिश्ते आते हैं तो इंसानी शक्ल में आते हैं, आपको लिटाया और आपका सीना मुबारक चाक किया, यानी काटा आपके सीने को, फिर वहाँ से आपका दिल निकाला और उसमें एक लोथड़ा था उसको निकाल कर जमजम के पानी से धोया, फिर वापस आपके दिल को जिस्म में डालकर और उस जगह सी दिया। अब बच्चों को तो नहीं पता ये क्या हो रहा है। जब ये सारा मंजर हुआ, बच्चे भागते हुए हलीमा सादिया के पास गए, कुतिला मोहम्मद, कुतिला मोहम्मद, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं। और वाकई जब वो कहती हैं कि आके देखा तो अल्लाह के नबी के चेहरे का रंग बदला हुआ था। हज़रत अनस कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के सीने पर सिलाई का निशान देखा करता था, यानी जैसे किसी ने सिलाया हुआ है। इस वाक्य से हलीमा सादिया डर गईं। कुछ इस किस्म के वाक्यात वो और भी देख चुकी थी आपके बचपन के मौजजात की सूरत में, कि उनको ये फील हो गया कि ये कोई अनयूजल बच्चा है, ये आम बच्चा नहीं है। लिहाजा उन्होंने कहा कि इससे पहले कोई और मामला आए, उन्होंने अल्लाह के नबी को तकरीबन और 2 साल की मुद्दत करते हुए वापस आपके ख़ानदान के हाथ में डाल दिया। यहाँ आप देखिए कि थोड़ी सी बात करते हैं कि दिल खुला, धोया गया, वापस बंद हुआ। आज लोग करते हैं ओपन हार्ट सर्जरी, ये कहाँ से दलाइल मिलते हैं? इस्लाम की बुनियाद पे आप देखिए कि आज जितनी दुनियावी तरक्की है ना, उसके भी रास्ते खुलते हुए दिखते हैं। और वो जो जिस्म से एक हिस्सा काट के फेंक दिया गया था ना, वो शैतान का हिस्सा होता है जिस्म में। बचपन में अल्लाह के नबी के दिल को इन चीज़ों से पाक किया गया था। क्यों? क्योंकि जब किसी से अल्लाह ने कोई बड़ा काम करवाना होता है ना, तो उसको शैतानी चीज़ों से दूर करता है। मसलन जैसे अब आप सब हैं, आपने भी नियत की है ना कि आपने कुरान को शुरू से शुरू करना है, आप नूरुल्लाह नूर वालों ने नियत की है कि आपने एक्सीलेंसी के दर्जे पे अपनी दोहराई करनी है, तो आप सब भी अपने लिए इस चीज़ को नोट कर लें कि आप जितना इन शैतानी और बेकार चीज़ों से खुद को पाक करते जाएंगे ना, अल्लाह ताला आपको अपने काम का बना लेगा, गैर महसूस तरीके पे आपकी ज़िंदगी में ये होगा। अब आप ज़रा वापस नबी सल्लम पे आए, माँ के पास आए, कितने साल के बिछड़े हुए थे बचपन से, ऐसे ही था ना, कभी आए मिल गए। सिर्फ 2 साल गुजरे माँ के पास थे, तो माँ, दादा और आपकी जो खादमा थी उम्मे ऐमन, इनके साथ मदीना आप गए। बच्चे थे, माँ गई, वहाँ वालिद की कब्र भी थी और दादा का भी ननिहाल वहीं था और माँ का मैका भी था। कहते हैं कि 1 महीना आप मदीना में रहे और रास्ते में आपकी वालदा बीमार हो गई, अबवा नाम के मुकाम पर पहुंची तो माँ का भी इंतकाल हो गया। क्या कहेंगे आप उस बच्चे को? 6 साल का बच्चा, पहले बाप और फिर माँ की मोहब्बत से महरूम है। हमें तो आज कॉम्प्लेक्स ही नहीं छोड़ते, ये नहीं मिला। हम तो ये रोते रहते हैं माँ बाप के सामने, जी हमें प्यार ही नहीं अपने दिया, जी आप हमारा ख्याल नहीं रखती, जी आप तो वो बड़ी बहन से ज़्यादा प्यार करती हैं, वो जी आप तो भाई को प्यार करती हैं। इधर देखिए कि इस दो जहानों का बादशाह जिसको अल्लाह बनाने वाला है, वो बचपन में ही माँ और बाप से महरूम है। और आज लोग कहते हैं हाय बाप नहीं रहा, अब इसको क्या मिलना है, हाय ये बेचारा यतीम, हाय माँ नहीं रही। देखिए खैर मिली कि ना मिली, अल्लाह क्यों इन सहारों से अपने नबी को बेनियाज कर रहा था पता है आपको? अल्लाह ये दिखाना चाहता था कि जिसका सहारा मैं बन जाऊं, फिर सारी दुनिया भी उसको छोड़ दे तो कुछ नहीं होगा। ये हमारे यहाँ एक बात अपने मारूफ सुनी हुई है कि अल्लाह के नबी का साया नहीं था। कुछ लोग सोचते हैं ना, वो असल में ये गलती खाते हैं, ये साया नहीं था। बचपन में बाप का साया नहीं था, फिर माँ के साये से महरूम हुए, दादा के साये शफकत में आए, 2 साल बस इधर गुजरे। अब देखिए 2-2 साल के वक्फे पे सारी मौतें हो रही हैं। इतनी तकलीफ थी बहू के मरने की, बेटे के, अब बच्चा भी पास है। इतनी मोहब्बत की अल्लाह के नबी से दादा ने, कहते हैं कि चूंकि वो सरदार थे, जिस जगह वो बैठते थे वहाँ कोई और नहीं बैठ सकता था। हरम में खाना काबा के पास उनका डेरा लगता था, लेकिन अल्लाह के नबी सीधा जाके उनकी गोद में बैठ जाते थे। जब लोग उनको उठाना चाहते तो कहते नहीं, मेरे इस बच्चे को ना छेड़ो, इसकी बड़ी शान है, इसकी शान बड़ी निराली है। बचपन से अल्लाह दिखाता है, लेकिन 8 बरस 2 महीने और 10 दिन आपकी उम्र मुबारक हुई कि अब्दुल मुत्तलिब भी चले गए। आप किसकी बात करते हैं, प्यारे सब चलते जा रहे हैं। अब वो मासूम बच्चा दुर्रे यतीम कितने हाथों से होता, वो 8 साल की उम्र में चचा के हाथों में आ गया। आज आप कहते जी इतनी ठोकरों और इतनी महरूमियों में पलने वाले लोग तो क्रिमिनल बन जाते हैं, उनको क्या मिलना है? लेकिन आप गौर करके देखें कि अल्लाह किस तरह नबी को इन सारे सहारों से बेनियाज करते हुए अपना नियाजमंद कर रहा है। चचा जो अबू तालिब थे, उन्होंने आपकी कफालत का बेड़ा उठाया। सगे भाई थे, मालदार तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने इतनी बरकत दी नबी सल्लम को पालने की वजह से, कहते हैं कि इनके घर में एक आदमी के हिस्से का जो खाना होता था ना, वो पूरे कुंबे के लिए काफ़ी हो जाता था। वही नबी है, बरकतों वाला आज भी है, और आप खुद भी सब्र और कनात वाले थे, और सब कुछ मिलता भी कनात पर ही है। आपको पता है कि नबी सल्लम ने चचा के इस एहसान का बदला कैसे उतारा? चूँकि चचा ने आपको पाला है मुश्किल वक्त में, तो अबू तालिब इतने कसीरुल अयाल यानी बच्चों वाले थे कि अपने ही बच्चों का खर्चा नहीं पूरा कर पाते थे, तो अल्लाह के नबी ने बड़े होकर हजरत अली को गोद ले लिया। जिस चचा ने बचपन में इनको पाला, उस चचा का बेटा अल्लाह के नबी ने पाला। अली रजी अल्लाह अन्हु को बचपन से अल्लाह के नबी के साथ रहने का मौका मिला कि आपने कहा कि मैं इसको पालूंगा। तो इससे आप देखिए कि क्या गुर्बत थे जिसमें अल्लाह के नबी पल रहे थे। तकरीबन आपकी उम्र मुबारक 12 साल के हुई, अब आप सोचिए ये कौन सी होती है, टीन एज का कुर्ब है, धूम के आती है, झूम के आती है जवानी हम पे। अल्लाह के नबी सल्लम तकरीबन 12 साल, बास कहते हैं कि 2 महीने 10 दिन ऊपर भी थे। तो अबू तालिब तिजारत के लिए एक जगह गए, इरादा किया, दिल में आया कि हाय इस भतीजे को घर छोड़ जाऊं, ना वो छोड़ना चाह रहे थे ना अल्लाह के नबी उनके बगैर रहना चाह रहे थे, कहा चलो मेरे साथ ही चलो। अल्लाह के नबी सल्लम जब उनके साथ गए, आपको पता है कि मुल्क शाम में उस वक़्त यहूद रहते थे, और यहूद का उस वक़्त के मुसलमानों के साथ थोड़ा सा गड़बड़ का मामला था। कहते हैं कि जब नबी सल्लम वहाँ गए तो बसरा नाम का जो शहर है वहाँ पहुँचे, तो बहीरा नाम का एक ईसाई राहिब था अपने गिरजे से बाहर निकल आया, काफ़िले के दरमियान से गुज़र कर अल्लाह के नबी के पास गया, आपका हाथ पकड़ा, अबू तालिब से कहने लगा इस बच्चे को वापस ले जाओ, ये बच्चा अपने वक्त का सरदार बनेगा, और ये वो बच्चा है जिसकी खबरें हमारी किताबों में हैं। बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं कि उसने देखा कि दरख्त झुक रहे हैं, अब अल्लाह ने जैसे चाहा इशारा दिलवा दिया, यानी वो चूँकि असल राहिब अपने दीन को सही समझता था, उसने पहचान लिया कि अल्लाह के नबी सल्लम जो हैं ये नबी बनेंगे। पूछा कि आपको कैसे पता है, कहा कि आपको नहीं पता, जब आप इस घाटी से गुजरे कोई दरख्त और कोई पत्थर ऐसा नहीं था कि जो सजदे के लिए ना झुक गया हो, और ये दोनों चीज़ ये चीज़ें जो है ये नबी के अलावा किसी को सजदा नहीं करती। फिर कहने लगा कि आप इनका कंधा दिखाएं। जब कंधे से कपड़ा हटाए ना, तो वहाँ आपके मोहरे नबूवत थी, इस तरह छोटी सी काली सी घुट्टी थी आपके यहाँ पे। तो जब वो देखा कंधे के नीचे जो नरम हड्डी होती ना, इधर सेब की तरह से एक चीज़ थी, तो वो देखी तो कहा, ये देखे हमारी किताबों में मौजूद है कि जो आखिरी नबी बनेगा उसकी कमर पे मोहरे नबूवत होगी। खूब खिलाया पिलाया, कहने लगा देखें जिस तरह मैंने पहचाना है ना, तो और बहुत सारे यहूद भी इसको पहचान लेंगे, और इस बच्चे की जान को खतरा, तो बजाय इसके कि आप इसको आगे ले जाएं, इसको वापस भेज दें। ये देखिए आपका बचपन था जिसमें आपके ये सारे इशारे हमें दिखते हुए मिल रहे हैं। और लिहाजा फिर अब अबू तालिब जो थे, उन्होंने नबी सल्लम को वहीं से वापस भेज दिया, आगे नहीं भेजा। यहाँ से आप देखिए कि हमारे नबी का बचपन भी आम लोगों से कितना मुख्तलिफ था, और जवानी तो क्या जवानी थी। यहाँ तक जो सुना है इस पर कोई बात करें, कुछ शेयर कीजिए, नबी पाक की ये बचपन की बातें सुनकर आपको क्या महसूस हो रहा जी? इधर से आप, नाम तो अभी मुझे नहीं याद आपके जी। शफकत, मोहब्बत महसूस हो रही है अल्लाह के नबी से? अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून आ रहा है जी। आप क्या सोच रही थी जी? पहली बार कोई नई चीज सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल दिमाग में बैठ रही जी। आप कुछ कहिए।
अरे मैं ये सोच रही थी कि हम कितने किस्मत हो गए, हम उस दौर में पैदा क्यों नहीं हुए, अब हमने अपनी आंखों से पूरे अपने नबी को देखा।
ये ना कहें, इसलिए कि अबू जाहल भी उसी दौर में था,
नहीं वो तो
लेकिन उसने
नहीं,
ईमान
वो तो
नहीं।
अपनी मोहब्बत ने कह रहे हैं ना कि
मेरी
आप
जान,
मोहब्बत
अबू जाहल भी मोहब्बत करता था। वो आगे आप सुनेंगे क्या होता है। ये दुआ करें हम जिस भी दौर में है ना, अल्लाह के नबी से प्यार और अमल करते रहे आपकी चीज़ों पे। नबी को देखना और महरूम रहना वो ज़्यादा बक पकड़ की बात है ना, और हम अल्लाह के फैसलों पे राजी हैं। हाँ जी, लेकिन वो जाहिर शौक, आप कहना ये चाह रही हैं कि आपको शौक आ रहा है कि मैं अल्लाह के नबी को देखती जी। आप प्लीज़, मैं तो समझिए आप स्टूडेंट हैं। सफ़ेद स्काफ का यही फ़ायदा होता है कि बंदा छोटा लगता है जी। अच्छा
कि
नबी को देखे क्या था और आप कैसे। और आप देखिए कि हम इतनी लाइट स्टोरी पढ़ें कि ये आज सारी आप शेयर कर सकते हैं जाके बच्चों से, मियाँ से, और कितने लोग हैं सच्ची बात है उनको ये बातें याद भी नहीं होंगी। ये जो इसमें नाम थोड़े से लिखाएंगे आप बुक से जाके हाईलाइट कर लीजिएगा, लेकिन कहानी की तरह सुना रही हूँ तो इससे ये है कि आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो बस दफ़ा हम बड़ी बड़ी बातें समझना चाहते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, दीन का नाम आता है हम कहते हैं पता नहीं क्या क्या, मैं फिकी बातें करनी है।